जब गए तो वहां बड़ी शोभा हो रही थी, तो श्याम सुंदर ने कहा कि भैया जरा यहाँ ठहर जाओ, ये देखो ना बड़ा सुंदर यहाँ पर वन है और घास तो बड़ी बड़ी अच्छी है, तो यहाँ ये बछड़े कुछ देर तक चर ले और हम लोग जरा विश्राम कर ले। तो सबके सब ठहर गए और शिलाएं वहां पर बैठने के लिए अपने आप बन गई, सुंदर सुंदर शिलाएं हैं। रत्नों ने देखा कि हमारा तो आज हम निहाल हो जाएंगे, तो वो रत्नों के जो देवता थे वो सब के सब वहां आ करके, और कहीं स्फटिक शिला है तो कहीं भद्र शिला है तो कहीं मरकत शिला है, और सब के सब कोमल होकर रह गए। ऐसा नहीं कि पत्थर पर चट्टान पर बैठे और गर जाए, ऐसा नहीं, सब के सब चिकनी सब के सब कोमल ऐसी ऐसी शिलाएं, तो उन पर ये सब बैठ गए और अपनी अपनी चीकों को जिनमें सामान था खाने पीने का वो वृक्षों के डालियों पर सभी लटका दिया टांग दिया। अब बोले भैया तुम्हारा जो श्रृंगार करेंगे आज, सखाओं ने कहा कि आज तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। तो देखो बोले तुम करोगे फिर हम भी करेंगे, तो कैसे तुम भी करना आज तो हम कर लें, आज हम कर लें फिर तुम कर लेना। तो गोप बालक जो हैं ये सब नई नई चीजें ले आए श्रृंगार करने के लिए, वो भगवाल स्वरक सुमन पिछधात भी काच गिंजा मुनिस्वर्ण भूषिता प्रभूषण, तो सब के सब ग्वाल बाल पहले से ही कोई पुखराज का गहना पहने और कोई घुंचे लगाए और कोई मणि और कोई सोने गहने पहने थे, फिर भी इन लोगों ने और वृंदावन की वो नई नई हरी हरी वृक्षों की कुंकले और नए नए गुच्छे रंग बिरंगे फूल मोर पंख गेरू ये जो धातु बन में मिली उन सब को लेकर के और ये श्रृंगार का नहीं लगे। तो उनका मन आकर्षित हो गया वन शोभा को देख करके, और वन के देवताओं ने ये आकांक्षा की मन में आज कि हमारी इन सामग्रियों को श्याम सुंदर स्वयं धारण करें। तो श्याम सुंदर उनके मन की बात जान गए, तो उन्होंने ही सखाओं को प्रेरणा की, कहा बोले भैया देखो ना ये फूल तो बड़ा अच्छा लगता है, और ये देखो ये कनेर का फूल कैसा अच्छा है, ऐसा अच्छा लगता है, इसको तो कान में लगा लें तो कुंडले बन जाए बड़ा अच्छा, तो दोनों छोटे छोटे जो फल हैं उनके तो मालाई गूंथ के पहन ली जाए तो बड़ा अच्छा लगे। तो श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार संकेत किया तो उन सखाओं के मन में आए कि आज इन सब चीजें इनको अच्छी लगती है ना, इसको तो उन चीजों से इसका श्रृंगार करें, तब वो बोले अच्छा तुम्हारा श्रृंगार करना है आज। तो गोप बालक जो हैं वो अच्छे सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ते ले आए, कुंकले ले आए, फूलों के गुच्छे के गुच्छे, कई तरह के फूल गुच्छे वाले फूल यहाँ लगते हैं, गुच्छे वाले फूल मानो वो गुच्छा बनाया हुआ है, और ऐसे फूल सुगंधित फूल मयूर पुच्छ ये सब इकट्ठी कर ली इन्होंने और सब सजाने लगे कन्हैया को। फिर दो तीन बच्चे जितने लगे धातुओं को लाल धातु और पीली धातु और हरी धातु जिसके नए नए रंग बना लिए इन्होंने, अब उन सबको लेकर के चित्रण करने लगे श्री कृष्ण के समस्त अंगों पर, किसी ने मोर बनाया तो किसी ने हाथी बनाया तो किसी ने गहना बनाया किसी ने कुछ बनाया, बड़ा श्रृंगार कर लिया। तो कहते हैं कि ऐसी शोभा हुई कि जो शोभा वो मणिमुक्ताओं से नहीं होती। आज ये वन्य श्रृंगार से सज्जित होकर के श्री कृष्ण तो बोले भैया हम तो बड़ा सज के बैठ गए, तुम लोग सजो, तो आप कृष्ण सजाने लगे सब, बीच बीच में ये भी किसी किसी को कुछ पहना देते, अभी सज गए सबके सब, बड़ा आनंद आ, ये सबका नया वेश बन गया। ये वन्य वेश में सब के सब सुसज्जित हो गए, बट अब खेलें, अब खेल शुरू हुआ उनका। तो खेल में जिनके पास सामान था वो ये श्रृंगार इनके पास, बिल इनके पास, और उसके बाद ये वन की सामग्री, वन के पशु पक्षी, वृक्ष पल्लव पेड़ पत्ता इत्यादि, तो ये सब के सब अब खेलने की तैयारी करने लगे। अब तैयारी क्या, बस वो आनंद सिंधु में तरंगे आने लगी, तो सब के सब अब खेलने लगे। आज एक बात नहीं ये हुई थी कि आज उन्होंने दाऊ जी को साथ नहीं लिया था, दाऊ जी से अलग लीला करनी इनको आज ये, तो दाऊ जी को साथ नहीं, इसमें वो सब सारी योजना पहले से बनी। दाऊ जी का था जन्म नक्षत्र, तो आज तो इंदू सरदार बनना था ना, दाऊ जी के सरदारी में जरा सहन संभ्रम हो जाए, कहीं डर हो जाए, कहीं थोड़ा सा संकोच करना पड़े, आज इनको संकोच निंदा करनी है। तो दाऊ जी का जन्म क्षेत्र था, तो आज शांति स्वस्थ चयन होगा, ब्राह्मण भोजन होगा, अभिषेक होगा। तो दाऊ जी ने कहा हम तो जाएंगे कन्हैया के साथ, तो कन्हैया ने कहा भैया एक दिन नहीं सही, देखो मैया राजी हो जाए, छोटी मैया जो है ये इसको दुख होगा, तुम रह जा। तो रह गए बेचारे, मेरे मैया नहीं, बलपूर्वक बलराम को रोक लिया। तो जाते जाते दाऊ जी ने कहलवाया कि देख भैया कृष्ण, तेरे साथ खेलने में मैं न जाऊं, ये है तो बड़ी भारी दुख की बात, मेरे मन के बहुत जरूर है। हम तो भो कृष्ण प्रयास है क्रीड़ा कृष्ण का प्रिय, हम विरुद्ध विधना विरुद्ध राशि पर क्या कहीं रोक लिया गया। बच्चों ने कहा दाऊ नहीं है, बोले दाऊ का आज जन्म नक्षत्र है, हम तो रहे नहीं। मैया ने तो कहा कि तुम भी रह जाओ, तो अपने हम तो रहे नहीं, और दाऊ ने अपनी सम्मति भेज दी है भैया ने, तो साथ ही है और क्या है, उसका मन तो साथ है ही अपने। इस प्रकार से वो अब वो पर्व सजाया, सजा करके उसके बाद अब वो खेलना शुरू किया। तो अब खेलने में आज स्वच्छंदता है, बच्चों का खेल है, आज स्वच्छंदता है। तो जा रहे थे ना, तो किसी ने पीछे से आके कच्छी का खेल उतार दिया, और किसी ने बगल से बेल खिचड़ी पीछे से, और उनको छिपा लिया। तो अरे बोले तो तुम्हारी चीज कहाँ गई, दूसरा बोला कहाँ गया चीजा तुम्हारा, कहाँ गई बोल। तो वो चला ढूंढने, तो उसने अलग दूसरे का हाथ फेंक दिया। अब उसको उसको छीनने के लिए दौड़ा पीछे, तो उसने वो चीज अलग फेंक दी। अब वो अपनी वस्तु अपनी चीज खा लेने के लिए लपका की दूसरी जा बैठा ली, और उसने आगे फेंक दी, और आगे उसने और आगे फेंक दी, तो इशारा हार गया। इस प्रकार एक दूसरे को हरा लें, तो ये बेचारा आधार करके लज्जित हो गया, जिसकी चीज फेंकी रही। तो बोले क्या करें, तो श्याम सुंदर आए, बोले अब तो ये हार गया, तो हार करके हार देख कर उसके बस चला उसको दे दी। अब बच्चे समझने लगे, बोले कन्हैया ने दी, कन्हैया ने पी तो हार ही गया। अब हंस करके कन्हैया ने हाथ फेर दिया उसके पीठ पर, बोले नहीं नहीं भैया, तू क्या हार गया, ये तो खेल है, देखो मैं तो रोज ही हारता हूं, तुम लोग रोज हराते हो ना मेरे को, एक दिन तू भी हार गया तो क्या है। अब भगवान ने क्या क्या, थोड़ी थोड़ा आगे बढ़ गया जोर से, चले बोले भैया मैं तो जरा शोभा देखता हूँ यहाँ के सुंदरता, जरा भाग निकले। तो आगे बढ़ गए, अब बच्चों में होड़ लगी कि देखो कौन जल्दी छूता है उनको, पहले कौन छूता है, कौन पकड़ता है।
तो बच्चे बड़े बड़े घटना पहुंच गया, इतने में आगे बढ़ गए, बड़े बड़ी घटना पहुंच गया। अब इस प्रकार से बच्चे सब पीछे पीछे दौड़ने लगे और ब्याज किसी ने पकड़ लिया, छू लिया, बड़े बस मैंने छू लिया, तुम सब हार गए। अब उनको हृदय से लगा लिया, सबको सब सुख समुद्र में डूब गए। फिर मन में आया बच्चों के एक समुदाय के मन में आया कि देखो ये बंसरी बजाता है, अपने भी बजाओ साथ साथ। तो सब ने बंसरी बजाना शुरू कर दिया। अब उस सब को तो बजाना आया नहीं, अब ये तो सारे ये तो संगीत के महान आचार्य ठहरे, और बच्चे बेचारे वो अपने अपने ढंग से बजाएं। तो तरह तरह के उसमें से स्वर निकले, विभिन्न स्वर, एक स्वर नहीं मिला। तो कुछ बेताम सी हो गई। तो एक सखा ने कहा, बोले भैया ये ठीक नहीं, ये हम लोग काम अच्छा नहीं हुआ। ये कन्हैया जब बंसी बजाता है ना, तब तो एक मधु की वर्षा होती है, और उसकी किसी के साथ तुलना बराबर हो नहीं सकती। तो हम सबका जो ये बंसी बजाना है, ये काम मिली नहीं, तो अपने ये तो मधु के प्रवाह में, मधु की धारा में हम लोगों ने ये कंकड़ डाल दी। तो खड़ 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 आवाज आने लगी, इनमें से क्या मीठा मीठी आवाज थी, ये तो मेरे हम लोगों ने और ये मधुर मधुर वंशी ध्वनि को रोक दिया, हमने बाधा कर दी, वृंदावन संपूर्ण। तो सब लोग उनका बच्चे को वो बजाओ मत, तो सबने बजाना बंद कर दिया, और फिर ये प्रस्ताव उनका निश्चय हुआ वहां पर कि जब तक कन्हैया की बंसी बजे, तब तक कोई बंसी न बजावे, क्योंकि दूसरे बंसी बजाएंगे तो कन्हैया की बंसी का जो सुख है वो तो मिलेगा नहीं, हम लोग सब करने लगेंगे, और किसी की कैसी तान, किसी की कैसी तान, सारा रस बिगड़ जाएगा। तो और बात में तो अपने सब कन्हैया को हरा देंगे। बच्चों ने कहा कि इधर ये हारेगा कैसे, तो कहा और सब बातों में हरा देंगे इसको, पहले तो हारेगा ही, इसमें कौन सा बल हारे पर इसको ये बजानी बड़ी अच्छी आती है। और अपने इसमें क्या है, बजाता ये है, सुनते हम लोग आनंद तो हमको मिलता है, इसमें भी हरा हुआ है ये। अरे सेवा तो हमारी करता है ना, बजाता ये सुनते हम, तो इस एक बाज में तो होड़ करे नहीं, इसमें तो बाजे लगावे नहीं, इसमें तो हरावे नहीं, अपना बजाई चले, अपने सुनते चले गए आराम से, और बात हम इसको हरा देंगे। तो बच्चों ने कहा ठीक ठीक। यही बात सिंगा ध्वनि में हुई, सिंह बजाने में भी सबने साथ दिया, तो सिंह की भी ध्वनि बिगड़ गई। तो कहा भी दो चीज ठीक है, दो चीज इसको छोड़ दो, सिंह ये बजाए तब अपनी मत बजाओ, और बंसी ये बजाए तब अपनी मत बजाओ, इससे कह दो तुम बजाया करो, इन बीच में नहीं बोलेंगे। तो मेरी अच्छी बात है, अब बंसरी बजने लगी, ये सब के सब खेलने लगी, इतने में उनको भगवान की गुंजार सुनाई दी बच्चों को। ये वृक्षों पर तमाम बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए, उनका रस पान करने के लिए भंवरे, असंख्य असंख्य भंवरे जहां तहां मंडरा रहे, गुनगुन करते हुए रहे। बच्चे भी तो है ना, तो उनके पास जाकर के खुद गुनगुन करने लगे। भंवरों की ध्वनि के साथ अपनी ध्वनि मिलाना शुरू कर दिया बच्चों ने। इतने में कोर बोल उठी, कुहू कुहू, और बड़े अपने पैसे बोलेंगे, अपने दोनों से बोलेंगे, तो कोर की तरह से बोलने लगे, कोई गुनगुनाता है, कोई कोर की तरह से बोलता है। बोले ये क्या है, देखो ये क्या चल रहा है, चल क्या रहा था, आकाश में उड़ रहे थे पक्षी, उसकी छाया पड़ रही थी नीचे, तो छाया चली जा रही थी ना उड़ने के साथ। अब बोले क्या जा रहा है, तो बोले तो नया खेल है, फिर उसके साथ साथ अपने भी चले, तो छाया के साथ लगे, वो छाया जहां जहां पैर रखे, इस प्रकार पैर रखते हुए अब वो पक्षी जो उड़े वो छाया जा बड़ी जोर से उड़ते हुए पक्षी की, अब ये भागे छाया के साथ साथ बच्चे से भागने लगे। इतने में सामने तालाब आ जाए, क्या करे डूब जाओगे, तब उठे हुए नहीं तो छाया के साथ जवान कितनी दूर भाग जाते। तो ये अब जब सरोवर इनको मिल गया तो मेरी सामग्री उसमें देखा कि हंस तैर रहे हैं, सब सुंदर सुंदर हंस जो हैं, तो उनको देख करके अरे बोले कन्हैया पी लिया जाए जल्दी यहाँ देख देख इसमें क्या है, ये देख तालाब में क्या क्या है। तो कन्हैया भी आ गए, कृष्ण जी के पास आ गए तो हंसों की नजर चले गई। अब हंसों की जो विचित्र गति हो गई, जब श्याम सुंदर की देखा विचित्र गति हो गई, तो मेरे ने अपनी अपना गर्दन उठा उठा करके और मंद गति से निकले बाहर और श्रीकृष्ण चंद्र की ओर चल पड़े। अब ये नया तमाशा आ गया, बोलिए देखो ना सफेद सफेद ये नई नई नए नए पक्षी जो हैं ये कन्हैया की तरफ आ रहे हैं। तो बच्चे सब देख करके बोले काम करो अपनी दिन की नकल करो। बच्चे भी सब पंखे बंद हो करके और हंसों के साथ साथ चलने लगे, हंसों की चाल से चलने लगे इसी तरह से। अब श्री कृष्ण का जो मुखमंडल है उस पर मधुर हंसी छा गई। मैं कितनी देर तक लीला चली कृपा है हंसों को इन्होंने सुख दिया। आज तो काल वाल लोगों को देखेंगे तो काल था वहां पर लीला क्षेत्र में कोई काल वाल की बाधा नहीं थी। वहां तो जितनी लीला चलती उतने ही सूरज देवता उनके लिए वहीं पर रह जाते। इतने में देखा बच्चों ने कि उधर बगुले बहुत से हैं, सफेद सफेद बगुले और ध्यान लगाए बैठे हैं। तो उनके पास जाके वो भी अपना आंख मूंद करके और बच्चे ध्यान लगा के बैठने लगे। बोलिए ध्यान लगाए बैठे हैं तो अपने भी ध्यान लगाए, शांत होकर के चुपचाप बगुले बड़े ध्यानस्थ होकर बैठते हैं। तो बच्चा एक गया दो गया पांच गए दस गए और बच्चे भी वहां कतार लगा करके आंख मूंदा, किसी ने अपना पैर ऊंचा गया तो नहीं पड़ा एक पैर से बजा गया नहीं। तो बोले दूसरे का काम नहीं कि देखो भैया सब तरह से अपनी नींद की मेरी नकल कर सकते तो अपने दोनों पैर से बह जाओ, पर यूं बह जाओ चुपचाप। तो सब के सब छोटे छोटे बच्चे वो सब जा करके उन बगलों की चेष्टा का अनुकरण करने लगे, दानव से बढ़े। इतने में देखा तो मोरों के दल के दल आ रहे हैं। अब श्री श्याम सुंदर के जो श्रीअंग की जो मधुर गंध रही ना स्वाभाविक, ये गंध तो वहां तमाम वन में फैल गई थी। तो दिव्य सौरभ मयूरों की ग्रहण शक्ति बड़ी तीव्र होती है सूंघने की शक्ति, तो मयूरों को दूर दूर से ये सुगंधी मिली तो उनका चित्त आकर्षित हो गया। और वे बस जहां श्री कृष्णचंद्र विराजित थे जिस सघन वन में सरोवर के तीर पर वहीं पर ये सारे के सारे मयूर आने लगे, दल के दल ये सब आए थे श्री कृष्ण का अभिनंदन करने। ये सब के सब भक्त लोग थे, प्रेमी लोग थे, मयूर के रूप में सब प्रकट हुए और सब लोगों ने अपनी अपनी पूंछ फैला के नाचना शुरू कर दिया, मयूर नृत्य करने लगे। इनको जब नाचते देखा तो श्याम सुंदर के मन में आए कि हम भी नाचें। तो मन में आके नाच उठा, मन मन के साथ शरीर नाच उठा। श्याम सुंदर वो बस वो नाचने में लगे हुए नृत्य कराए जो मयूर रहे, उन मयूरों के बस पदविन्यास पर वैसे ही पैर रखते हुए और उसी ताल पर और उसी प्रकार की शरीर की भाव भंगिमा करते हुए ये नाचने लगे। मयूरों के साथ श्याम सुंदर नाच रहे हैं, जरा झांकी करिए। सरोवर का तीर है और वहां पर गोप बालक तमाम कुछ तो बगलों के पास बैठे हैं, कुछ हंसों को देख रहे हैं और बहुत से मयूरों को देखने लगे। और मयूरों के पास श्याम सुंदर नाच रहे थी उन्हीं की ताल पर श्याम सुंदर और मयूर दोनों ही नृत्य मत्त हो गए। तो बंदर वे जो थे वो दूर दूर पर थे तक तो बंदरों ने देखा ये नाच, बंदरों ने देखा नाच दूर से तो बंदरों ने देखा तो बड़ा तमाशा हो रहा बड़ा सुंदर। बंदर मुग्ध हो गए, ये सारे शिशु तो मुग्ध हो ही रहे थे, बंदर भी मुग्ध हो गए सब के सब। तो बंदर सब डालने पर आके बैठ गए देखने लगे नाच, मोरों के साथ मोर मुकुट धारी का नाच देखने लगे सब। अब शाखाओं पर बंदर चंचल बंदर जो थे ना वो बिल्कुल अचंचल हो गए, नाच देखने में इतना उनका चित्त लग गया कि वो मन की भाव समाधि हो गई वो बंदरों के समूह की। पर छोड़े तो आखिर बंदर ही ना, तो एक बंदर था उससे उसने देखा जाए नजदीक से देखे ऊपर के डाल से कूद के और नीचे के डाल पर वहां बैठा, वह एक उतरा वहां और तो देखते देखते सैकड़ों सैकड़ों बंदर जो थे और नीचे के डाल पर आने के बाद किसी ने डांटा वाटा नहीं। तो बंदर जो होते हैं ये ऐसे होते हैं कि अगर इनको कोई डांटे नहीं तो घर में आ जाते पास आ जाते बैठ जाते तो नीचे उतर जाए एकदम नीचे उतर जाए और नीचे आकर के और वो देखने लगे चारों तरफ से बीच में श्याम सुंदर नाच रहे हैं आसपास मयूर हैं मयूर नाच रहे हैं और ये गोप सखा सब के सब देख रहे हैं और उधर बंदरों के दल ने चारों से घेर लिया और वो खड़े होकर बंदरों देखने लगे खड़े खड़े होकर के। जब बंदरों को खड़े देखा किसी मयूर का ध्यान गया तो मयूर डर गया बोलिए देखो ना कैसे खड़ा है बंदर। तो मयूरों को डर हुआ एक को डर हुआ तो एक ने अपनी पूंछ को सिकोड़ा नाच बंद हो गया जाके डाली पर बैठ गया एक डाली पर दूसरा बैठा तीसरा बैठा सारे मोर नाच छोड़ छोड़ करके डालियों पर अपनी जा बैठी। तो बच्चों ने देखा नाच बंद हो गया कैसे बंद हो गया तब तो तगमे रहे ना देखा बंदरों को रहे बोले ये बंदरों ने नाच बंद किया ये सब तो बोले बंदरों के पीछे। अब बंदर जाकर के डाली पर बैठ गए इनका तो बारह से पूछ नीचे लटक रही ना तो पकड़ पकड़ पूछ में नीचे खींचने लगे शिशु जो है वो खींचने लगे विकर्षण तकी से बाल आना आ रहे हैं पशु के अग्रमान खींचने लगे उनकी पूछों को तो ये बेचारे भागे इस डाल से उस डाल पर। तो बच्चे चल गए पेड़ों पर बड़ा उनको उस डाल गया उसको चढ़ गए। अब बंदर ने देखा ये तो बंदर ऊंचे चढ़े अब वहां तक ये पहुंच नहीं सके तो ये बंदर मुंह करो बंदर इनकी तरफ बंदर जरा धमकाया करते हैं बंदर घुड़की दिया बंदर तो बंदर घुड़की देंगे बच्चे भी घुड़की दें। अब बंदरों के साथ ये खेल चला जैसा बंदर अपना मुंह बनाए स्वभाव का विकृति उसी प्रकार का ठीक मुंह ये बना लें वैसे दांत निकाल लें वैसे डरे डराने। तो बंदरों ने देखा कि अब तो भाई ठीक नहीं तो बंदर बेचारे भागे दूर चले गए। तो बच्चों ने देखा कि बंदर तो भाग गए और कुछ नीचे बेचारे बैठे थे जो छोटे छोटे बच्चे थे ऊपर गाछों पर चढ़ नहीं सके पर खेल में रहा के नहीं जाए। तो कुछ मेंढक थे वहां पर मेंढक सरोवर के किनारे मेंढक उछल रहे तो मेंढकों को दृष्टि गई उनकी ये भी पृथ्वी पर आस रख करके तो मेंढकों की भांति सुबकने लगी बच्चे और ठीक अब छोटी छोटी जो बाहर जल धारा बह रही तो ये उसको जैसे मेंढक पार कर उछल करके इसी प्रकार ये भी उछल करके उसको पार करने लगे। उनकी चेष्टा देखकर शाम सुंदर हंस पड़े बगैर हमारे सखा कैसा खेल खेल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। अब सारे गोप बालक हैं, सब हंसने लगे, सब हंसी का वहां पर हंसी की ध्वनि हो गई, सब लोटपोट हो गए। अब वो कुछ बालकों ने ये देखा कि वहां सूर्य आ गया था, पीछे से छाया आई, तो बच्चे जहां तो उसके साथ साथ छाया जाए, बच्चों की छाया तो अब खेल गई वहां भी था, तो छाया बजा भी गया। तो अब वो छाया के साथ खेल बढ़ कभी यूं हाथ करें, खेल बढ़ कभी नाचे तो छाया भी नाचे, कभी उछले छाया भी उछले। तो इस प्रकार से वो अंगों को, अपने अपने अंगों को भांत भांत से नचाने लगे, छाया नाचने लगी, तो बड़ा इनको आनंद, बोले देख भैया ये तो नया खेल मिल गया आज एक हम लोगों को, जैसे हम नाच रहे थे कौन नाच रहा है यहां पर हम लोगों के साथ ही। तो छाया को देख देख के आनंद ध्वनि करने लगे। अब साहब एक बात और हुई, वो हुई कि ये संयुक्त प्रतिष्ठ छाया स्वतंत्र प्रतिष्ठा, वो जो जो से बोले ना हाथ उठे, इतने भी इनके पहले भी होते रहा था, ध्यान रख गया। तो वो नीरव जंगल था, तो ये जैसा बोले वैसे प्रतिध्वनि हो, तो देखा ये तो कोई बोल रहा है, और ये कन्हैया भी बोल रहा है, तो मालूम होता है कि दूर पर दूसरे लोग हमारे जैसे हैं, और ये कन्हैया भी दूसरा है, पता है हम कौन है। तो दोस्त बोले तुम कौन हो, तो बदले में आवाज ये तुम कौन हो, बोले देखो तो लड़ने को तैयार है। हम बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। तो ये बोले हम श्याम सुंदर के सखा हैं, तुम आवाज हम श्याम सुंदर के सखा हैं, बोले ये तो पूरा दल है आज, पूरा दल है। तो बोले क्या तुम सोचा कि दल तो है पर कन्हैया शायद न हो उनके साथ। तो पूछा कि क्या कन्हैया तुम्हारे साथ है, तो बंदोनिया कन्हैया तुम्हारे साथ है, बोले तो सब नकल करती है हमारी, दुष्ट हो गए तो नहीं तुम्हारे साथ, तो आवाज है नहीं तुम्हारे साथ। तो गुस्सा अगले झूठे कहेंगे और अगले झूठे कहेंगे। अब तो उन्होंने देखा कि ये तो अब गुस्सा आ गया, गुस्सा आकर के साथ देने लगे, बोले बड़े बदमाश हो गए, तो बड़े बदमाश हो गए, बोले बदले में गाड़ी देते हैं, वो तो नहीं मानते, नहीं मानते, तो देखो अगर नहीं मानोगे तो जैसे बस की दशा हुई थी वही तुम्हारी हुई, चीन जा रहे कन्हैया, तो वही वहां से आवाज है चीन जा रहे कन्हैया, उधर से सांप उधर से सांप। अब कन्हैया ने कहा भैया ये तो ऐसे ही बोलते हैं, कोई हमने तुम्हारा ख्याल है, तुम अपना खेलो, मेरे खेलो कैसे कन्हैया, ये देखो ना ऐसा बोलता है। तो कन्हैया ने फिर दूसरा खेल शुरू कर दिया, उसमें चली गई जमीन तक सब की घट उनकी आनंदित के लिए करें, जो वचन चरावत मिल सब गावत कुसुम अनेकन माल धरें, एक छींके छोरत एक एक चोरत, संक्षेप वर्णन कर दिया, एक छींके छोरत एक एक चोरत पाग विविध विध खात यहां, एक मोरन बोलन हंस कलोलन बोलत बोलन बोलत हां, एक कोकिल कोकन मरकट हुकन हुकत जहत हास करें, एक भवरण गुंजन बहिर्त गुंजन बहिर्त कुंजन स्वांग धरे, एक प्रभु रिझावत प्रभु सुख पावत अति प्रभी गति नृत्य सच है लख सुर सब तरसत सो सुख बरसत शिशु आनंद खिल बचते। देवता उत्तर सब देख रहे, देवताओं ने देखा कि आहा इन गोपों के भाग्य का क्या ठिकाना है, ये सुखदेव जी कहते हैं कि इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूतिया दास्यं गतानां परदैवतेनां
मायाश्रतानां नरदारकेन साकं विजरूकृतपुण्यपुञ्जः युक्तादपांसुर्बहुजन्मकृच्छ्रतो गतात्मधिर्योगिविरञ्जनप्यलभ्यः सवेदेविषय स्वयं स्थित किं वर्ण्यते दुष्टमतौ वजौकसाम्। ये भगवान जो हैं ये एक रूप में सबको नहीं मिलते। वो जो लोग ज्ञान योगी हैं, जो ज्ञान के द्वारा अद्वैत तत्व का परिशीलन करते हैं, उन लोगों को ब्रह्मानुभूति के रूप में ये प्राप्त होते हैं। और जो कुछ और निकट आते हैं वे पूर्ण माधुर्य का तो आस्वादन नहीं कर पाते, पर वो ज्ञानियों का जो तत्व ज्ञान जन्य निर्विशेष ब्रह्मानुभव है, उसके साथ साथ वे अचिंत अनंत ऐश्वर्य और माधुर्यमय सच्चिदानंद लीला विग्रह के रूप में भगवान को देखते हैं, और वे शरण कीर्तनादि के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। वे ईश्वर बुद्धि रखने से भगवान को अपने से बड़ा मानते हैं, अपने को छोटा मानते हैं, और बड़े संभ्रम के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी आदर बुद्धि के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ वे भगवान की उपासना करते हैं। भक्तगण ये भगवान के दिव्य लोकों को प्राप्त होते हैं, पर उनमें संकोच संभ्रम रहता है, इसलिए माधुर्य का पूर्ण प्राकट्य उन भक्तों के सामने नहीं होता। ये भक्त हैं और ये भगवान को हृदय से चाहते हैं, पर श्रद्धा पूर्वक चाहते हैं, और ये श्रद्धा जो है ये शुद्धानुराग में बाधक है। श्रद्धा सम्मान बड़ी अच्छी चीज, तो प्रत्येक जीव में भगवान को देखने की श्रद्धा होनी चाहिए और सारे जीवों की सेवा होनी चाहिए भगवत भाव से। श्रद्धा बड़ी ऊंची चीज, सम्मान सबका करना चाहिए, सब में भगवान है ये समझकर सबके आगे हाथ जोड़ना चाहिए, सबका प्रणाम करना, सबको प्रणाम करना चाहिए। परंतु ये जहां केवल विशुद्ध अनुराग है और जहां माधुर्य का पूर्ण प्राकट्य है, वहां श्रद्धा सत्कार सम्मान ये बीच में बाधक हो जाता है। इसीलिए ये जो पांच रस हैं उनमें विशेष विकास आरंभ होता है सख्य से। शांत भक्त जो हैं वे तो हमेशा ही डरते रहते हैं, उनका बड़ा ऊंचा भाव है, उनके अंदर भोग कामना नहीं, उनके अंदर विषय कामना नहीं, उनका मन उनके वश में, उनकी इंद्रियां उनके वश में, ये सब प्रकार से भगवान का सेवन करते हैं। परंतु सर्वजाति सर्वांतर्यामी सर्वतोचक्षु सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वनियंता भगवान का वे स्मरण करते हैं, वो स्वयं उनकी श्री विग्रह की अपने हाथों से सेवा नहीं करवाते। इसके बाद जब थोड़ा विकास होता है तब दास्य भाव की प्राप्ति होती है। हम लोगों में तो दास्य भाव तो क्या शांत भाव भी नहीं है, शांत भाव में भी मन इंद्रियों का सर्वथा नियंत्रण हो जाता है। दास्य भाव में तो सर्वथा समर्पण है अपना केवल सेवकत्व में, सेव्य की सेवा ही दास का स्वरूप है, उसका अपना कुछ भी स्वार्थ कुछ भी परमार्थ, उसकी अपनी कोई भी अलग चीज नहीं रह जाती,
वो सेवामय बन जाता है, वो कभी ये सोचता नहीं कि सेवा के बदले में मुझको क्या मिलेगा। तो सेवा के अतिरिक्त बल भी देंगे, सेवा के कुछ घर का काम भी करें, उसके घर का काम नहीं मत करने का, घर का काम उसके रहता ही नहीं, वो तो दिन रात सेवा को ही अपना स्वभाव बना लेता है। कभी उसकी उसके मन में और भगवान अपने सेज के मन में परस्पर विरोधी भाव आता ही नहीं, क्योंकि उसका अपना भाव ही नहीं कोई। कहीं कोई सेवा के लिए कहे पर हमारे मन में ये आ जाए कि भाई इसमें तो अपनी जरा दिक्कत होगी, अपनी अलग रहेगा ना, अपना सुख अलग है, अपना स्वार्थ अलग है, तो वहां सेवा बनती नहीं। तो सेवा में तो केवल वो सेज की रुचि उसका स्वभाव बन जाता है, आज्ञा नहीं, संकेत नहीं, अपने आप स्फुरण होता है उसके मन में। तो दास भाव में ये कुछ संभ्रम सम्मान कम होता है शांत की अपेक्षा, और वो नजदीक आकर के भगवान के श्याम सुंदर के अपने उनको स्वामी मानकर मालिक मानकर निरंतर उनकी सेवा में अपने को कृतार्थ मानता है। तो वो सेवा उसका धर्म होता है, इसी हनुमान जी का इसी में बड़ा ऊंचा पद माना है हनुमान जी महाराज सेवक शिरोमणि। अपने लिए कुछ चाह नहीं, अपना पुरुषार्थ माना, सेवक कभी ये नहीं मानता कि मैंने सेवा की है, वो सेवा करता है अनंत, परंतु उसका भाव यही है कि मैं कुछ करता ही नहीं, ये तो सब वो चाहे से करवा लेते हैं। हनुमान जी से जब कहा है तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, बंदर इस डाल से उस डाल पर कूद जाए, शाखा से शाखा पर जाए, और बंदर का इसमें कौन सा पुरुषार्थ है, पर वो समीप रह करके सेवा करता है, उनके मन की बात को समझता है, उनके मन के अनुसार अपने जीवन को बनाता है। इससे आगे जब सख्य आता है तब कुछ बराबरी की बात होती है। तो जब तक भगवान को वो ऐश्वर्य युक्त ज्ञान युक्त मानकर सेवा करते हैं तब तक उनको भगवान की भक्ति तो प्राप्त हो गई। वो केवल जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं उनसे तो कुछ उनका विलक्षण भाव हो गया, वो केवल ब्रह्मानुभूति नहीं है, ये निर्विशेष जो ब्रह्म सुखानुभूति है ये केवल अनुभूति नहीं है उनको, परंतु उनको वो स्थान भी प्राप्त नहीं है जहां पर मान संभ्रम रहित श्री कृष्ण के साथ भगवान के साथ मधुर भाव से लीला चलती हो। तो ये सब अलग अलग साधना है भगवान की को प्राप्त करने की और भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने की। तो एक होते हैं जो ब्रह्म सुखानुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं, एक होते हैं जो ऐश्वर्य माधुर्य युक्त भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें केवल ब्रह्म सुखानुभूति से काम नहीं चलता। अगर वही तत्व ज्ञान वहां पर हो तब तो ये ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं होता, और वो तो फिर वो कहते हैं कि जैसे समुद्र में कोई जल बिंदु गिर जाए और गिर करके वो समुद्र के अंदर जाके समुद्रवत हो जाए तो उसे समुद्र की तरंगों का और तरंगों के नृत्य का तरंगों की शोभा का कुछ पता नहीं लगता। जैसे जल बिंदु सिंधु में विलीन हो गया उसी प्रकार उसके गांधीर्य में वो विलीन हो जाता है सच्चिदानंद सिंधु में, वहां ऐश्वर्य माधुर्य की जो तरंगे हैं ये उसको नहीं दिखाई देती कि सुख से वो वंचित रहता है। पर जो भक्त साधक हैं उनको इसकी प्राप्ति होती है और वो श्रवण मननादि के द्वारा चित्तनादि के द्वारा भगवान की सेवा करता है, वो भी अपने सांसारिक वासनाओं को छोड़ता है, ये घर मकान वैभव देह इत्यादि इसमें उसका भी आत्मनियोग नहीं होता, वो निरंतर भगवान की स्वयं कीर्तना भी नहीं लगा रहता है। ये भगवान के साथ इनका जो संबंध जुड़ा रहता है, अपने अपने प्रेम के अनुरूप कोई सखा है, कोई पुत्र है, कोई इनको पवित्र मानता है और कोई इनको अपना प्राण बंधन मानता है। इस प्रकार अपने अपने भाव के अनुसार बीड़ा माधुर्य का रस आस्वादन करते हुए ये अपने आप को खो देते हैं। और भगवान का स्वयं स्वरूप सर्वव्यापी और ये सारे विश्व में विस्तृत जो भगवान का ऐश्वर्य रूप, ये सब सामने आने पर भी उनका जो प्रेमानुरूप व्यवहार है वो उसमें बाधा नहीं आती। कितना को मारा यशोदा मैया ने देखा, भगवान ने अपने श्री मुख में तमाम अनंत विश्व ब्रह्मांडों को दिखा दिया, मैया ने देखा, सखाओं ने प्रत्यक्ष देखा, वत्सासुर बकासुर इत्यादि का भगवान ने उद्धार किया, सखाओं ने देखा कि दोनों वृक्षों को उन्होंने उखाड़ दिया और उसके अंदर से दो दिव्य पुरुष निकले, पर उनके मन में कभी कोई ऐश्वर्य की भावना जागृत नहीं हुई। तो वे निरंतर अपने उस माधुर्य में ही लगे रहे, सखा पुत्र प्राण बल्लभ के रूप में नई नई लीलाओं का आस्वादन करते रहे, और इसीलिए भगवान का प्रेमावतार होता है। ये जो प्रेममय द्विभुज मुरली मनोहर श्याम सुंदर नूर मुकुटधारी भगवान जो हैं, ये जो वृंदावन का भगवान का मधुरा मधुर लीला संपन्न अवतार है, ये अवतरण केवल और केवल इन प्रेमियों के लिए होता है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन एक चौथे लोग भी हैं, उनको हम कहते हैं बहिर्मुख, और उनकी संख्या अधिक होती है। वो न तो ज्ञानी योगी होते हैं, न वो ऐश्वर्य युक्त भगवान को भजते हैं, और प्रेम मधुर प्रेम की तो उसमें गंध भी नहीं होती, वे भोगों को भजते हैं। भोग भजन और भगवत भजन इसमें बड़ा भारी अंतर है, और ये अंतर वहां पर थोड़ा सा समझ में नहीं आता, बुराग में समझ में आता है, पर मधुर संबंध युक्त रस में और भोग रस में बहुत दफे भूल हो जाती है पहचानने में। तो समझ लेता है कि मैं भगवान को पुत्र मानकर, मैं भगवान को अपना प्राण बल्लभ मानकर, मैं भगवान को अपना सखा मानकर, तमाम वस्तुओं के द्वारा, अपने द्वारा, अपने सुख के द्वारा उनका सेवन कर रहा हूं, परंतु हो जाता है भोगों का सेवन। तो यहीं पर ये देखना पड़ता है कि भोग सेवन है या भगवत सेवन है। भोग सेवन में भगवत सेवन में इतना ही अंतर है कि भोग सुखों की प्राप्ति न होने पर, विपरीत हो जाने पर भोग सेवनकारी को दुख होगा, विपरीतता प्रतीत होगी, और भगवत सेवनकारी को भगवत सेवा से कहीं विस्मृति हुई तो उसमें दुख होगा। वो भगवत सेवा से क्षण भर के लिए भी विलग नहीं होना चाहता।